چیتنیا سواری بھگوان آتما انادی انت شدھ چیتنیا ماتر ہے، جان ماتر ہے، میں شدھ چیتنیا ماتر جان ماتر بھگوان آتما ہوں، پرتی سمے یہ جاگرتی بنی رہے، اس جاگرتی کا نام کرم ہے۔ شریر کی پرتیک کریا کے کار میں اور راگا کی وکلپوں کے بہتے پرواہ میں میرا شدھ چیتنیہ بنا کہیں پر بھی ملا نہیں ہے، ایسی جاگرتی اس جاگرتی کا نام کرم ہے۔ جب آتما میں ایسی دشا پرگٹ ہوتی ہے تب پرتیک آتما میں پرماتما دکھائی دیتا ہے۔ جارج برجیل کے جیون کی گھٹنا ہے۔ گرجیت ایک بار اپنے 30 شیشیوں کو لے کر سادھنا کے لیے روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بنگلے میں ٹھہرا تھا اور 30 سادھک تھے۔ گرجیت نے اپنے سادھکوں کو کہا تھا کہ یعنی تم ایک دوسروں کی اور نظر بھی کرو گے تو تمہیں سادھنا سے باہر کر دوں گا۔ جیسے ہی تمہارا دھیان گیا کہ کوئی کیا کر رہا ہے تبھی تمہاری سادھنا بند ہو گئی اور تم یہاں سادھنا نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے 3 دن میں ہی 27 سادھک باہر ہو گئے۔ جب انتم 3 باقی بچے تب 3 دن میں ایک ہی سادھک بچا تھا اور وہ سادھک انتم دن تک بچا تھا۔ 30 دن کی سادھنا سفل ہونی تھی اور 30 دن کے بعد میں سفل سادھنا کرنے والے اس ویکتی کو گرجیت نے کہا کہ چلو بہت دنوں سے بازار میں گھومنے نہیں گئے، تو گھوم کر کے آتے ہیں، بازار میں دیکھ کر آتے ہیں کیا چل رہا۔ اس ویکتی کو لے کر جو گرجیت کا خاص شیشیہ تھا جس کا نام تھا پیری آسپینس کی، پیری آسپینس کی کو لے کر گرجیت بازار میں گیا اور گرجیت نے آسپینس کی کو پوچھا کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، بازار میں کیسا لگ رہا ہے؟ تو آسپینس کی نے بتایا کہ یہ دنیا پاگلوں کا میلہ دکھتی ہے کہ کوئی دھن کے لیے ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، یہ پاگلوں کا میلہ دکھتا ہے۔ کوئی سکھ کی کھوج میں گاڑی لے کر کس اور جاتا ہے، तो कोई व्यक्ति सुखी गोद में गाड़ी लेकर के दूसरी दिशा की ओर जाता, तो मुझे तो ये पागलों का मेला दिखता है। गुरुजी का शिष्य साधना में सफल हो और बाहर निकले तो पागलों का मेला दिखता, विद्रोही परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में अपनाकर आत्मा के ज्ञान और ध्यान में सफल होने वाला वह शिष्य यदि बाहर निकलता है तो उसे यह दुनिया पागलों का मेला नहीं दिखती है, परमात्मा का मेला दिखती है, क्योंकि वहां एकमात्र चैतन्य तत्व ही उसकी नजर में आता है। उसकी दृष्टि में बाहर दिखने वाला तेज नजर में नहीं आता। और अभी हमारी जो दृष्टि है वो तीन दृष्टि है, जैसा कि अभी आपने देखा कि कोई काली चमड़ी वाला हो, जिसे हमें कहते हैं देखो ये काला आदमी, अफ्रीका का, युगांडा, केन्या का कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो मनुष्य को मनुष्य के रूप में भी अभी नहीं देखते, नजर में भेद खड़ा होता है कि जैसा मैं हूं ऐसा वो नहीं, कुछ अलग प्रकार का। और विद्रागी भगवान ने तो इतने सूक्ष्म बात बताई है कि देह वाली दृष्टि ही चुके जीव मात्र में परमात्मा दिखाई दे, और ये बाहर का जो राग का भाव है, प्रेम का भाव है, हम पूरे जीवन भर एक भ्रम में जीते हैं। और हमारा जो जीवन इतना भ्रम से भरा हुआ है कि मुझे चिंता नहीं है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास ये परिवार जन मेरा हित करने वाले हैं, मैं बीमार होऊंगा तो मेरा ध्यान रखने वाले हैं, और पूरा जीवन इस भ्रम में जीते हैं, और मृत्यु की वह घड़ी आती है कि हमें इन सबसे एक क्षण में अलग कर देती है। और ज्ञानी कहते हैं कि इस भ्रम में से बाहर निकल करके हर पल जागृति पूर्वक जीवन जीना ही साधक की साधना है। प्रतिक्षण जागृति बनी रहे, यही साधक की साधना है। जिनके प्रति हमारा देह दृष्टि का, शरीर की और दृष्टि का भाव है, सब मोह के भाव की उत्कृष्टता ऐसी होती है कि हमें यह याद ही नहीं आता कि ये सब हमारा क्षण भर का राग का भाव है। थोड़े दिन पहले की ही मुंबई की घटना है कि एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही प्रवचन में आ गए थे, और प्रवचन में पास पास में बैठते थे, बिल्कुल जैसे आपने भी डिस्टेंस बना के रखा है, ये जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, ऐसा वहां नहीं था, दोनों पास पास में बैठते, बाकी सब लोग तो फिर बैठते हैं, मगर ये दोनों प्रवचन के बीच में कंधे पर हाथ रखते हैं। तो मैंने उस प्रेमी को कहा कि कंधे पर हाथ रख के कम से कम प्रवचन में मत गए। तो प्रेमी कुछ बोले, उससे पहले ही प्रेमी का ने जवाब दे दिया, आपको क्या दिक्कत है, जब मुझे दिक्कत नहीं। तो मैं चुपचाप सुनता रहा, मैंने सोचा जाने तो कम से कम सुन रहे, किसी की सीट पर बैठ कर फिर प्रवचन के बाद में उन्होंने ये कहा कि आपको सच बताए हम दोनों का प्रेम कभी छूटने वाला नहीं, ऐसा है सबका प्रेम छूटेगा मगर एक हम दूसरों एक दूसरों का प्रेम नहीं छूटेगा। और दोनों की शादी भी हुई, पति ऑफिस जाता है तो अपने साथ दो लैपटॉप लेके जाता है, एक लैपटॉप काम करने के लिए और दूसरा लैपटॉप वाइफ को काइट कर चेहरा देखने के लिए। और पत्नी भी जब रोटी बनाती है और जब तक वहां पर काइट पर या फेस लाइन पर पति का चेहरा न देखे तब तक रोटी नहीं बना पाती। एक पल के लिए पति अपनी पत्नी का चेहरा देखे बिना रहता नहीं और 7 साल तक दोनों ऐसे इलाज में रहे। थोड़े दिन पहले पत्नी का फोन आया कि आपसे मिलना है, उसमें क्या हुआ तो उसने कहा खाना पकाते समय गैस का जो गैस की जो थी तभी उसमें से ऐसा गैस निकला था और उसमें आग लगी तो मेरा चेहरा पूरा जल गया है। दिखने में तो इतनी सुंदर एक्ट्रेस से फिल्म की एक्ट्रेस से भी सुंदर दिखती थी मगर उसका चेहरा ऐसा जल गया कि पूरा चेहरा कुछ भी चपड़ी बाकी नहीं बची। और 15 दिन पहले ये हुआ है और 15 दिन में मेरे पति ने 1 सेकंड के लिए भी मेरे पास में देखा नहीं है। और ये बात तो दूर, रात को घर आता है तो बोलता है आज मैं इस लड़की के साथ घूम के आया, ट्रिप पर गया था, मिलकर आया। आप जो 7 साल पहले बता रहे थे ये बात मुझे आज समझ में आ रही है। मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी को यदि इस देह से अलग कर दिया जाए तो जिसको आप कहते हो कि ये मुझे प्रेम करता है वही आपको दिखेगा नहीं, वो देखना भी नहीं चाहेगा। इससे ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें प्रेम करता है तो वो पूरा शरीर का पूरा अपने स्वार्थ का ही प्रेम है, वरना विद्रोही भगवान पुत्र पत्नी परिवार संपत्ति को छोड़कर क्यों जाते, क्यों वे अपरिग्रही होते। और इसलिए आज का जो ये विषय रखा है कि मैं चैतन्य मात्र हूं, हमने अनंत देह धारण किए, उन शरीरों का आज कुछ भी पता नहीं है। मैंने भूतकाल में गाय का शरीर धारण किया मगर वे गाय के शरीर के जो परमाणु थे आज कहां उड़ रहे हैं मुझे पता नहीं। कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का ऐसे अनंत देह मैंने धारण किए मगर उन देह के परमाणु आज कहां है वो मैं जानता हूं नहीं। तो ये जागृति रहे कि इस शरीर के जो ये परमाणु है इन परमाणुओं का भी कुछ महीने बाद कुछ साल के बाद ऐसा ही होने वाला है, इसलिए किसी भी अवस्था में किसी भी हालत में देह में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं और शरीर में नहीं हूं ऐसा जानने वाला जो चैतन्य तत्व है बस वही मैं हूं। और ऐसी जागृति का प्रकट होना इसी का नाम धर्म है। चैतन्य की जागृति जब प्रकट होती है तब हर पल जमा देके वहां चैतन्य ही दिखाई देता है। सिर्फ विचारों में नहीं वाणी में भी चैतन्य 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 की ही पुकार चलती है। और जगत को दो भागों में बांट दिया है, एक भाग तो ऐसा कि जो क्षणभंगुर है, जो अनित्य है, और दूसरा ये निकारी ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा जो नित्य है। जब ऐसा दृष्टि में आया तब कोई भेद ही नहीं बचा, जहां देखा वहां परमात्मा देखा, भेद वाली दृष्टि ही मिल गई। एक बार गोरी चमड़ी वाले लोगों ने चर्च बनाया, काली चमड़ी वाला व्यक्ति उस चर्च में अंदर जा ही रहा था कि दरवाजे पर ही उसे रोक दिया गया। उसने कहा मुझे अंदर जाना है, प्रार्थना पूजा वगैरह करना है, तो नहीं जाने दिए और बहाना ऐसा बनाया कि तुम्हारे प्रति परमात्मा खुश नहीं है, तुम वैसे हो वैसे हो, थोड़ी साधना करो, अपनी दशा प्रकट करो, पात्रता प्रकट करो, ऐसा करके कहके बाहर से बुला दिया। इस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, घर वापिस लौटा और रात को सपने में ही उसे भगवान आए और भगवान के सामने उसने शिकायत की कि मुझे आज चर्च में नहीं आने दिया। बोले क्यों नहीं आने दिया? तो उसने कहा कि दरवाजे पर ही एक व्यक्ति ने मेरी काली चमड़ी को देखकर कहा कि तुम्हारे लिए ये जगह नहीं, मुझे नहीं आने दिया। तो भगवान ने कहा तू दुखी क्यों हो रहा है, तुझे तो आज नहीं आने दिया, मैं भी उसमें अंदर जाना चाहता हूं, पिछले 3 साल से मुझे भी नहीं जाने दे रहा, इतना आग्रह में अटका हुआ है कि इतने भेद में पड़ा हुआ है, मैं तो ये बता करके ही नहीं गया था, आज भगवान महावीर को यहां आना हो तो उन्हें भी एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं कहां जाऊं किसके पास, क्योंकि यहां इतने भेदों में अहंकार और आग्रह के कारण और इसलिए हम जो ये मिशन लेकर निकले हैं पूरे विश्व में सिर्फ श्वेतांबर और दिगंबर के भेद को मिटाने के लिए नहीं, जैन और अजैन का भी भेद मिटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आग्रह इतना है कि हम धर्म को समझने के लिए विचार ही नहीं करते, विश्वास करके बैठे हैं और विश्वास से ही हमने धर्म को मान लिया। थोड़ा भी विचार करें तो समझ में आ सकता है कि धर्म कभी भेद में भेद रूप नहीं हो सकता। जहां चीटी आलू प्याज उसमें रहने वाले जीव परमात्मा है तो फिर मनुष्य और मनुष्य में ये भेद कैसे? मगर होता यूं है कि बच्चे को बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, बच्चे को बचपन से ही बता दिया बेटा तू जैन है, बेटा अमर है वो दिगंबर है, वो श्वेतांबर है, वो पारस वासी है, वो देरावासी, बचपन से उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो ब्लैंक नोटबुक था। और जितने बताया उतने सत्य को जाना ही नहीं है और पूरी दुनिया में आज ये हो रहा है। और इसलिए इतने मंदिर बनते हैं, मस्जिद भी बनते हैं और गुरुद्वारा बनते हैं, चर्च बनते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन इतनी हिंसा होती है। नहीं तो धर्म कितना फैलना चाहिए, क्योंकि सभी को जन्म से ही क्रिश्चियन बना दिया, जन्म से ही जैन बना दिया, जन्म से ही हिंदू बना दिया। उसे ये कहा नहीं गया कि बेटा तू विचार कर और निर्णय कर सत्य और असत्य क्या है। और जब तक विचार नहीं होगा तब तक आत्मा में आध्यात्मिक क्रांति नहीं होगी। जब भगवान के समुद्रण में पशुओं की भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं और जानवर को भी परमात्मा की वाणी सुनने का अधिकार है, तो हम कौन है जो मनुष्य मनुष्य में ये भेद करे। और इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र पूरी दुनिया में सभी लोगों के पास पहुंचाने का हमने विचार किया। कोई लोग कहेंगे कि मांस खाने वाले के घर में ये आत्मा की बात पहुंचेगी तो कितना बुरा होगा, असाधना नहीं लगेगी, ये परमात्मा की वाणी मांस खाने वाले मुसलमान के पास पहुंच जाए। मगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो वाणी शास्त्र में लिखा है ना कि सात व्यसन का वर्णन किया कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये जो तुम लिखा ये नहीं खाना चाहिए, ये किनके लिए लिखा था? जो खाते पीते थे उनके लिए कि नहीं खाते पीते थे उनके लिए? जो नहीं खाते पीते उन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं, जो खाते पीते हैं उनको कहा कि ये नहीं खाना चाहिए। और जब तक उनके पास में वो बात पहुंचेगी नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, समझेंगे कब? तो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की वाणी सुनने का समझने का अधिकार है। इसलिए हमने क्या किया, ये जैन धर्म जो बोलते हैं वो निकाल करके जीव मात्र का धर्म कह दिया कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कोई भेद और आग्रह लगे नहीं कि ये कोई जैन धर्म की अपने पास लेकर आए, कि जीव मात्र का धर्म। और आज तक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति एक बार भी प्रवचन में आता है और सुनता है, पूर्व का संस्कार उस आत्मा में ऐसा हो तो बचपन से ही उसे धर्म की रुचि होती। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से ही वो धार्मिक विचार वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी भी बीत जाए तो भी धर्म करने का विचार नहीं आता। वो क्यों? ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। बच्चे के विचारों से ये पता चलता है कि वो कहां से आया है। मां बहुत सी मां कहती है मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा है वो छोटा था, तब तो इतना रोता था कि पूरे मोहल्ले में पता चल रहा था कि घर में छोटा बेटा, और दूसरा बेटा इतना शांत कि घर में भी पता नहीं चलता कि छोटा बेटा है। तो मां बाप तो एक है मगर ये दोनों बच्चे अलग अलग स्वभाव वाले क्यों? कि वो पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, आपने कुछ नहीं कहा उसे। मम्मी ने दो चॉकलेट छोटे भाई को दी, दो चॉकलेट बड़े भाई को दी, छोटा भाई अपनी दो चॉकलेट फटाफट खा गया, और फिर बड़े भाई के सामने मुंह फैला करके खड़ा है। तो बड़े भाई ने सोचा चलो मेरी एक टोकरा नीचे दे देता हूं, तो दे दी। तो छोटे भाई ने तीन खाई और बड़े भाई ने एक खाई। तो माँ बाप तो एक ही थे, परिवार एक था, एनवायरमेंट जो फैमिली का था वो एक था। तो फिर एक हुआ लालची और दूसरा हुआ उदार, ये क्यों? ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं, माँ बाप तो एक ही थे, और इससे ये आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है कि आत्मा अनादि से है, पहले से है, ये शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा की खोज हम सब करना चाहते हैं, परंतु जहां आत्मा है वहां खोजा नहीं, इसलिए आत्मा प्राप्त हुआ नहीं। तो आपने कहानी सुनी होगी, एक बूढ़ी महिला है जो रास्ते पर सुई ढूंढ रही थी, तो किसी ने कहा अंधेरा है और आपकी आंख भी कमजोर हो गई है, आप क्या कर रही है? बोले मैं सुई ढूंढ रही हूं, मुझे सुई खोजने में सहायता करो ना। तो बहुत देर तक सुई को खोजते रहे, सुई मिली नहीं। फिर उस व्यक्ति ने इस महिला को पूछा कि ये सुई खोई कहां गई, खोई कहां है? बोले वो तो कमरे के अंदर घर में खोई है। बोले या बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोले बाहर उजाला है इसीलिए ढूंढ रही, अंदर अंधेरा है। तो जहां खोया हो वहां नहीं खोजे, भले ही बाहर उजाला हो वस्तु कभी नहीं मिलेगी। तो हम आत्मा की खोज करें तो कहां से करें? कि जहां है वहां करें, तो देह रूपी देवल में है वहां से खोज करें। हम मंदिरों में परमात्मा की खोज करते कि परमात्मा वहां से मिलेगा, और जितने भी रूप रंग के आकार दिए हैं ये सब हमारे विचार है और कुछ भी नहीं। किसी के विचार में परमात्मा ऐसे आए कि मैं 5 फीट की मूर्ति बनाऊं, किसी के विचार में ऐसा है आपने 7 फीट की बनाऊं। लोग अपने विचार में जो आता है ऐसे भगवान बनाते हैं, और हमारे जैसे ही हमने भगवान को बनाया है। हम हिंदुस्तानी लोग हमारा जैसा चेहरा ऐसा भगवान का बनाते हैं। आप चाइना में देखो, चाइना में भगवान की मूर्ति वो लोग बनाते हैं, उसमें नाक दबी रहती है बिल्कुल, वो भगवान को अपने जैसे ही बनाते हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत सी जगह भगवान को बनाया, उन्होंने बड़े बड़े होट रखे, वो अपने जैसे भगवान को मूर्ति में बनाते हैं। पूरी दुनिया में लोग भगवान को अपने जैसे बनाते हैं और पूरी खिचड़ी पर फिर उनकी पूजा करते हैं, और भगवान नहीं मिलता तब कहते हैं भगवान होते नहीं है, और कभी नहीं मिलेगा क्योंकि जहां था वहां खोजा नहीं था, वो इस देह रूपी देवल में और खोजने गया था बाहर। तो फिर यहां दर्शन करने फिर आना या नहीं आना? मुनिवर राम जी ने कहा कि परमात्मा को मैंने पूजा पकड़ नहीं मिला, मिला तो 7.5 दिन हाथ के देवल के अंदर दिया। मैं तीर्थों की यात्रा के लिए गया मगर वहां नहीं मिला, तो तीर्थों की यात्रा में गया वो तो व्यर्थ गया। तो कहा व्यर्थ नहीं गया, वहां तीर्थों की यात्रा के लिए गया वहां से ही तो पता चला कि परमात्मा तुम्हारे देह के जीवन में। ऐसे ही जैसे आप यहां मंदिर में आए तो आपको पता चला, घर से बैठे बैठे नहीं चलता, इसलिए तो मंदिर में आना। परंतु अंदर की खोज शुरू रहे चालू रहे कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं अंदर देह रूपी देवल में विद्यमान है। चैतन्य तत्व कि जो अभी देह में चीनी के ऊपर पैर रखा आपकी चीनी तोड़ के लिखती है और फिर उसका हिलना बंद हो गया अपन के पैर मर गई, बस वो मर गई बोलते तो कौन था जो वो निकल गया जिसके बाद हम कहते हैं कि वो मर गई, बस वही तो चैतन्य है, वही तो शुद्धात्मा है। उसे आप आत्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, चैतन्य कहो, और वही मैं हूं, वही आप हो, और हर पल हर क्षण ये जागृति कि जितने भी एटम अभी इस दुनिया में है, इस विश्व में है, सभी परमाणुओं ने हमने अपनापन करके माना है कि ये परमाणु मेरे हैं। जब ये शरीर के रूप में बने थे तब हर बार ये मान कर आए थे कि माने थे कि ये परमाणु मेरे हैं, ये शरीर मेरा है। आज इस परमाणु को हम पहचानते तक नहीं, इसलिए जब ऐसी अनुभूति होती हो कि शरीर की अवस्था में रहकर भी शरीर से न्यारा ऐसा जो जानने वाला भगवान आत्मा है, बस वही मैं हूं। मैं चैतन्य तत्व, मैं शुद्धात्मा, सामने जो कुछ भी है, दर्द कुर्सी भी हो तो दर्पण दर्द नहीं हो जाता, दर्पण एक ही रहता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में ये सब जानने में आते हैं, मगर मैं अनेक रूप नहीं हूं, मैं एक रूप हूं, मैं एक जीव हूं। ऐसी अनुभूति, उस अनुभूति का नाम आत्मा अनुभूति है, उसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन है। और ऐसी आत्मानुभूति प्रकट होती है जब जगत के अंदर प्रत्येक आत्मा हमें परमात्मा दिखाई देता है, तब वो भाव छूट जाता है कर्तृत्व का, अहंकार का, कि इस जगत में मैं कुछ करने वाला हूं, इस जगत का जो परिणाम होता है उसमें कहीं ना कहीं मेरा हस्तक्षेप है। इस भाव से सहज ही मुक्ति होती है। अनित्यता की असारता का बोध होने पर ही नित्य चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। अनित्यता का बोध जितना मनुष्य गति में होता है उतना बाकी की गति हमें नहीं होता। एक क्षण में क्या था और क्या हो गया। लाउसे ने एक दृश्य देखा था पेड़ का, पेड़ का एक पत्ता पेड़ से नीचे गिरा और लाउसे ने कहा कि मुझे जीवन का रहस्य समझ में आ गया, मैंने समझ लिया जीवन को कि ये जितने भी हरे पत्ते दिखते हैं तो सब पत्ते मुझे सूखे दिखाई देने लगे। मैं इंतजार नहीं करता कि वे कब सूखे होंगे, मुझे अब भी सूखे दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की मृत्यु को देखा, समस्त लोगों की मृत्यु का बोध हो गया, इन सभी को पता है। एक दृश्य देखकर ही ऐसा बोध हो जाता है और उस बोध के बल पर ही साधना भी शुरू होती है। अनित्यता की असारता के बोध के बल पर बंगाल में एक घटना ऐसी घटी थी। एक न्यायाधीश थे, उनका नाम था लाला बाबू। वो सुबह घर से घूमने के लिए निकले, घूमते घूमते रास्ते से जा रहे थे तो किसी मकान में से आवाज आई। आवाज ऐसी आई कि लाला बाबू उठिए, बहुत सो लिया, और कितना सोओगे। कोई भाभी थी, भाभी अपने देवर को जगा रही और देवर का नाम लाला था, तो उसने ऐसा कहा लाला बाबू बहुत सो लिया और कितना सोओगे, उठिए जागिए। और ये वाक्य लाला बाबू के कान में पड़ा, और उन्होंने तुरंत ही विचार किया कि यह परमात्मा ने ही मेरे लिए संदेशा भेजा है कि जागिए और बहुत सो चुके। वो दिन लाला बाबू का आखिर दिन था तब उन्होंने संन्यास ले लिया कि अब कितना सोऊंगा। एक क्षण में ये इतनी अनिश्चयता का बोध हो कि अभी है अभी क्षण नहीं है, पलटता हुआ स्वरूप दिखाई दे। विंस्टन चर्चिल के जीवन की एक घटना है, क्षणभंगुरता का अनिश्चयता का बोध। चर्चिल चर्चिल के जीवन में क्या हुआ कि वो टैक्सी से जा रहे थे एक भाषण देने के लिए, और भाषण देने के लिए वहां पर प्रोफेशन का जो हॉल था वहां पहुंचे। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पूछा कि कितना हुआ, तो उसने बताया इतना हुआ। फिर चर्चिल ने कहा तुम एक काम करना, मैं एक घंटे के बाद आऊंगा और तुम्हें वेटिंग का चार्ज भी दे दूंगा, तुम मेरा वेट करना। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा टैक्सी ड्राइवर ने, मैं वेट नहीं करूंगा, अभी 5 मिनट का समय बाकी है और अभी एक बहुत बड़े वक्ता चर्चिल है, उनका भाषण रेडियो पर आने वाला है और मैं तुरंत अभी यहां से घर जाना चाहता हूं और मुझे चर्चिल का भाषण नहीं छोड़ना है, तो मैं आपका वेट नहीं कर सकता। तो चर्चिल को लगा कि एक छोटा टैक्सी वाला भी मेरा भाषण मिस नहीं करता, मैं कितना बड़ा हूं कि एक टैक्सी ड्राइवर ने भी कह दिया कि मैं वेट नहीं करूंगा, एक चार्ज हो गया तू भी। ये जानकर चर्चिल को बहुत आनंद आया और चर्चिल ने बहुत बड़ी फीस टैक्सी ड्राइवर को दी। टैक्सी ड्राइवर के हाथ में बहुत बड़ी फीस आई और टैक्सी ड्राइवर ने कहा साहब चर्चिल की ऐसी की कहती आप जाओ मैं वेट करता। जब ये घटना घटी तो चर्चिल को बोध हो गया कि एक क्षण में जगत का स्वरूप देखो क्या पलटता है। मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता था, मगर एक पल में पता चला कि कौन बड़ा है। हमें भी हर पल ये याद रखना चाहिए जो पलटू ने अपने जीवन में देखा था। पलटू के जीवन में ऐसा हुआ, वो मधुमक्खी होती है वो फूलों पर बैठती है, फूलों के रसों को चूसती है और रस को चूस करके वो छत्ता तैयार करती है मधुमक्खी। और पलटू ने देखा 6 महीने तक वो छत्ता तैयार कर रही थी मधुमक्खी, छोटा था पहले, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता गया। और एक बार ऐसा हुआ कि खिड़की से देख रहा था कि उसे जीवन का रहस्य समझ में आ गया कि क्या हुआ कि मौत बेचने वाला व्यापारी आया और नीचे धुआं किया, तो धुआं होते ही वो मधुमक्खी को उड़ जाना पड़ा और मध बेचने वाला व्यापारी छत्ता लेकर के चला गया। जब पलटू ने ये दृश्य देखा तो पलटू ने कहा मुझे जीवन का रहस्य समझ में आ गया कि हम पूरी जिंदगी कमाई करके बंगला बनाते हैं ये मानकर के लाइफ कभी सेटल हो जाए, मगर मृत्यु की घड़ी आती है कि एक पल में हमें इन सबसे अलग कर देती है और छोड़कर हमें जाना पड़ता है। क्रिसमस के दिन चल रहे थे, पति और पत्नी दोनों ने सोचा किसी को बाजार में कुछ खिलौना खरीद कर आते हैं बच्चे के लिए, जब खिलौना खरीदने गए पति जो था वो तो मैथमेटिक्स का मास्टर था और पत्नी भी मैथ की टीचर थी, तो दोनों ने सोचा एक काम करके खिलौना में क्या लेना कि पजल लेते। तो उन्होंने पजल ली और पजल को मांगा और सेट कर रहे थे कि कैसे सेट होता होगा ये, मगर सेट नहीं हुआ। बहुत देर तक पत्नी ने प्रयास किया मगर उससे हो नहीं सका। वो पति को पूछना नहीं चाहती थी कि आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि खुद भी मैथ की टीचर है, अहंकार इतना था। और जब नहीं ठीक हुआ तो पति को पूछना पड़ा कि आपकी आपसे ठीक हो पाएगा, ये कैसे पत्र को चेक करना है। पति ने भी प्रयास किया मगर नहीं हुआ। तब दुकानदार को पूछा, दुकानदार ने कहा यह चेक कभी नहीं होगा। बोले चेक कभी नहीं होगा तो बनाया क्यों? बोले इसलिए बनाया कि ये पजल सेट करते करते सेट न हो, सरल सेट करने वाले को पता चल जाए कि जैसे ये पजल सेट नहीं हो रही है, नहीं हो सकती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी कभी भी सेट नहीं हो सकती है। मौत आने पर भी कुछ न कुछ अपसेट रहेगा ही रहेगा, और इसलिए ये जागृति हमें हर पल रहे कि बाहर में कहीं पर भी हमें सुख को खोजना नहीं, क्योंकि जागृति ही धर्म है, अवेयरनेस ही धर्म है। हम गरीब गरीब सोए हुए, एक जगह प्रवचन हो रहा था राजस्थान में और एक करोड़पति धनपति एक सेठ था, वो भी प्रवचन में बैठा था, मगर उसे चारों प्रवचन में नींद आ जाती थी। तो जो प्रवचनकार था बहुत बड़ा पंडित था, तो उसने चारों प्रवचन में उनका नाम लिया, क्यों बाबू जी सो रहे हो? सुरन की जाकर और कौन कहता है सो रहा हो? ऐसा झटका लगा सुरन जाते हैं, यहां पर भी सोने वाले जाग जाना। और आजू बाजू में सो रहे हैं, गहरी नींद में तो जगा दे, ऐसा होता है। पहले प्रवचन का टाइम मुझे बहुत ध्यान में नहीं रहता, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक घंटे का प्रवचन हो और पांच घंटे चल जाए, एक घंटे का प्रवचन हो एक साल में गारंटी, एक घंटे प्रवचन नॉन स्टॉप चला ऐसे ही चला, पता ही नहीं चला। तो 78 घंटे नॉन स्टॉप डे एंड नाइट प्रवचन चला था मुंबई में 2009 में। सबसे उन्होंने ऐसा किया कि प्रवचन एक घंटे का हो तो अलार्म रखने का गया। तो एक बार अपने मित्र को लेकर गया और एक घंटा पूरा हुआ तो अलार्म बजा। तो फिर प्रवचन के बाद मित्र को मैंने पूछा कि कैसा लगा प्रवचन? बोले क्या कैसा लगा, सब लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था उससे पता चल गया प्रवचन कैसा होगा, कि तुम्हारा प्रवचन ऐसा है कि प्रवचन सुनते सुनते लोग सो जाए कि अलार्म रख के जगाना पड़े, अलार्म उनके लिए नहीं रहा, मेरे लिए ऐसा टाइम हो गया। तो वो पंडित जी भी प्रवचन दे रहे थे, बोले कि क्यों बाबू जी सो रहे हो? सुनो नीचा के कौन कहता है? प्रवचन में सुनने वाले लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, बड़े लोग होते हैं तो डरते हैं कि इसको मैं चालू प्रवचन में इसका नाम लूंगा तो वो क्या करेगा, कैसा लगेगा, उधर बुरा लगेगा। इसलिए एक पंडित जी ने क्या किया, इस छोटे से बच्चे को उनके पास में बिठा दिया और उसको कहा जैसे ही गोद हो जाए तुम पैसा हाथ लगा लेना, इस छोटे बच्चे का कोई बुरा नहीं मानता। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि हाथ लगा के जगा देता था, मगर दूसरे दिन क्या हुआ कि वो पूरे प्रवचन में सोते रहे। तो फिर उस बच्चे को कितनी बार बोला मैं वो सका था, तो बच्चों को फिर प्रवचन के बाद में पूछा कि उनको जगाया क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें एक रुपया उनका प्रवचन कर सकेगा। तो ये जो जागने का नाम धर्म है और हम अभी करीब करीब सोए हुए लोग हैं, जागृति ही धर्म है। और आज का जो विषय है आत्म जागृति, जैसे कि अभी मैंने कहा मुंबई में नॉन स्टॉप 78 घंटे चला था, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि यहाँ कहीं 78 घंटे न चल जाए, उससे पहले ही बता दे। मगर छात्र से ही डर है, आत्म जागृति धर्म है। कुछ लोगों का कहना है जैसे ये मिशन के बारे में आपने देखा कि आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, December 2004 का दिन था। 5 मिनट में मैं आपको संक्षिप्त में एक स्टोरी बताता हूं, संक्षिप्त में यह स्टोरी बताता हूं। 26 दिसंबर 2004 के दिन इंडोनेशिया में सुनामी आया था और 2,30,000 लोग मर गए और 2,30,000 लोगों में जो सेंटर पॉइंट था वो बांदा जैसा इंडोनेशिया का, और वहां पर 2,30,000 लोगों में एक व्यक्ति बच गया था वहां पर सेंटर पॉइंट पर। उतनी भीड़ में लाशों के पहाड़ के बीच में, और वो जो व्यक्ति था जो अभी आपके सामने बैठा हुआ है, और तब ये विचार आया था इन 2,30,000 लोगों की सुनामी के मृतदेह जैसे इसके पास में क्या ये विकराधी वाणी को जगत भर में पहुंचा है। तो कुछ लोगों का ये जानने का भाव था कि आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, 5 मिनट तो बताने में तो कुछ है ही नहीं। मगर हम जब छोटे थे पूज्य गुरुदेव श्री गांधी स्वामी का जन्म हुआ, मैंने तो गांधी स्वामी को देखा नहीं है, मगर गांधी स्वामी के देह छूटने के 9 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ और उनके ही गांव में उंगराला में। और जब मैं 7 साल का था तो पापा के पास पूजा के लिए जाता था, तो पूजा में अभी जो आपने तस्वीर देखी वो 7 साल की, तो उसमें वो चावल चिराने के लिए हर कंगी में पानी की द्वारा ये स्वाहा ये स्वाहा। तब मैं पापा को कहता था कि ये चावल में नहीं चढ़ा गया, इतना धर्म सस्ता नहीं हो सकता कि एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल दिया कि धर्म हो गया, धर्म इतना आसान नहीं। जागृति धर्म है, पर कम 7 साल की उम्र से छात्रों की गाथा सहज ही याद आती थी। और तब पापा से कहता ये शास्त्र मंगा के तो इस शास्त्र के पेज नंबर 39 पर कितनी लाइन पर ये बात लिखी है, मतलब 1500 शास्त्र को बिना पढ़े लिखे अंदर में याद आते थे और शास्त्र मांगता है, तब पता चलता था कि इन सौ का कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सौ में तो कुछ पढ़ा नहीं। और उस 1500 शास्त्रों में 2000 पेज के, 3000 पेज के शास्त्र, सहज ऐसा होता था। और फिर सबसे लेकर आगे जाकर के अध्यात्म की रुचि बढ़ी और जयपुर में 5 साल का अध्ययन हुआ, जो पंडित गोविंद स्मारक है वहां पर, और 19 साल की उम्र में मुंबई में आना हुआ। मुंबई की स्टोरी तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो मुंबई में रहकर के आगे जाकर पिछले 13-14 सालों से ये प्रदेश की यात्रा हर साल 40-45 कंट्री हर साल जाना आना होता है। और अभी तक ये जैसे आपको बताया कि पहले तो 6 महीने इंडिया में रहते थे, 6 महीने प्रदेश रहते थे, और अभी 2 महीने इंडिया रहते हैं, 10 महीने इंडिया से बाहर मिशन चलता है। मगर 2004 से ये जो घटना घटी, सबसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप भाषा को जानते हैं, ये भाषा आपको कैसे आती है, इतनी सारी भाषा हमें कोई भाषा सीखी नहीं है, और दुनिया का कोई भी देश हमें नया नहीं लगा। सबसे पहली बार जब इंडोनेशिया की धरती को मेरा पैर छुआ, उस दिन मैंने वहां पर वहां की भाषा में पहली बार प्रवचन हुआ इंडोनेशियन लैंग्वेज में, और हमने सीखी नहीं कि आई लैंडेड चाइना फर्स्ट टाइम एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई गेव लेक्चर इन मैंडरिन लैंग्वेज। आई हैव नेवर लर्न एनी लैंग्वेज एंड आई कैन स्पीक ऑटोमेटिकली दैट लोकल लैंग्वेज व्हेरेवर आई लैंड इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और अब तक ऐसा हुआ, फिर मैं जापान गया, जापानीज में, थाईलैंड में थाई में, फिलीपींस में तगालॉग में, मलेशिया में मलायो में, इंडोनेशिया में भी इंडोनेशिया, आचे, बतामी, जापानीज, पाटा, इन सब भाषाओं में ऐसे ही प्रवचन हुए हैं। और दुनिया की कोई भाषा अफ्रीका में स्वाहिली में, वहां पर तंजानिया में, रुवांडा में, युगांडा, कुरुंडी, कॉन्गो, नामीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ऐसे ऐसे जगह पर जहां पर भी गए थे, सब ये विचार आया कि ये भाषा का ध्यान नहीं हो जाता, तो इसका सदुपयोग क्यों न करे। विद्रागी भगवान की वाणी को, जैन धर्म की वाणी को, विद्रागी जैन धर्म को पूरी दुनिया में उनकी भाषा में अनुवाद क्यों न करे। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र को 415 भाषाओं में हम अनुवाद कर रहे हैं। अभी तक 96 लैंग्वेजेस में अनुवाद हो चुका है आत्मसिद्धि शास्त्र का, और भावना है 415 भाषाओं में हो। और उन जीवों के साथ में हमारे गुणानुबंध है, मैं यहां माया नहीं उतरा, मुझे नया नहीं लगता, मैं किसी भी जगह पर उतरा हूं एयरपोर्ट पर, मुझे नया नहीं लगता, मैं मॉलडीव्स में उतरा, माले में, वहां पर राष्ट्रीय इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में वहां तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैसे एयरपोर्ट को वहां पर फ्लाइट से मेरे पैर जमीन पर रखे कि मैंने त्रिवेणी भाषा बोलना शुरू किया। और त्रिवेणी भाषा में जब मेरे प्रवचन वहां होने वाले थे मुझे पता नहीं, मगर वहां पर पैर रखा, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ में बात कर रहा था, वियतनाम में कह रहा था, वियतनामीज में इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ में बात कर रहा, बहुत सी जगह पर ऐसे ऐसे घटना ऐसी ऐसी थी कि जब मैं वहां पर उतरा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट को देखा, कई बार भी मॉडलिंग की एंट्री की नहीं, फर्स्ट टाइम की, तो उसने मुझे पूछा फर्स्ट टाइम एंट्री और सीधे ही लैंग्वेज फ्लुएंट कैसे हो सकता है। तो उसको ऐसा लगा ये नकली पासवर्ड है, फ्रॉड आदमी है। तो उसने मुझे ऐसा बताया कहा हो कहा चाहे सच बताओ सच बताओ आप ही कहते हैं। और उसने उन्होंने लिया बांग्लादेश का पीछा, मुझे 8 दिन के बाद में बांग्लादेश में आना। तो बोले बांग्लादेश जाते हो? बोला आज जाना है। बोले पाकिस्तान? बोला पाकिस्तान नहीं। बोले बांग्लादेश से काम हो जाता है तो पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? तो अभी कॉल किया मिलिट्री पुलिस को, डॉग स्क्वाड वाले को, एक टेररिस्ट आ गया है। इमिग्रेशन ऑफिस रात को 8 बजे में मैच हुआ था, एक टेररिस्ट आ गया है, सामान मिलता था, सामान को चेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जोड़ी कपड़ा ही अपने पास में रखता, तो एक जोड़ी कपड़ा मेरी बैग में से निकला, बैग से जो बच्चों का स्कूल का होता है वो लेकर के निकलता हूँ। मेरा पहली बार यहाँ पर 8 जोड़ी कपड़ा लेकर आया हूँ, हैंड पैंट जिंदगी का पहली बार ये बैग उठाई 8 जोड़ी कपड़े, एक पीछे रहता है। और आपसे क्या कि मैं कल ही बता रहा था 18 दिन की यात्रा थी, एक जोड़ी कपड़ा लेकर पहले उन्हें कपड़े लेकर गया, रात को धोगा था, चावल पैसे करता तो बहुत किलो सूते वो पहनता था। 18 घंटे की यात्रा हुई, चप्पल पहनता हूँ 200 रुपये के मेरे चप्पल आते हैं और जूते 1000 रुपये के आते हैं। 800 रुपये में क्यों बिगाड़ू? अफ्रीका में कॉन्गो में बच्चे भूखे मरते हैं, उनके लिए 800 रुपये के चावल आ सकते हैं। यदि हम अपने जितनी संपत्ति का उपयोग उनके लिए कर सके करें, व्यर्थ में हम कितने धन को गवा देते हैं, व्यर्थ में ही गवा देते हैं। 5 बच्चे कॉन्गो में रहते हैं, एक बच्चा कहता है 4 दिन के बाद मेरा नंबर चलेगा खाने में, एक ही बच्चा एक दिन में खाना खा सकता है, 4 बच्चे भूखे होते हैं। दुनिया में ये हालत है, इसलिए हमने ये विचार आया कि बस 2 जोड़ी कपड़े हमारे साथ में रहते हैं, तो एक जोड़ी कपड़ा भी कर दो और पक्का भरोसा हो गया कि ये टेररिस्ट है, क्योंकि टेररिस्ट कम कपड़े लेके घूमते हैं। फिर अंदर से खाना निकला तो खाना अपन साथ में लेके जाते तो आप 100% बुकिंग में मिलता नहीं खाना, तो खाना निकला। बोले खाना है क्यों लेके निकले हो? बोला मैं अपना खाना ही खाता हूँ। बोले टेररिस्ट अपना ही खाते, दूसरों का खाते नहीं, क्योंकि डाउट होता है कोई दूसरा कुछ मिला देगा आपको। फिर अंदर से दवाई की गोली दी गई, और दवाई की गोली डॉक्टर ने दी थी, आपको तो पता है डॉक्टर इंडिया से जो दवाई देते ना हम बाहर के अंदर ऐसा करके उसको कोई फिक्र नहीं होता। बोले दवाई किसकी है? तो मैंने कहा लूज मोशन की। बोले लूज मोशन है? मैंने कहा लूज मोशन तो नहीं है, तो क्यों रखती है? मैंने कहा कभी हो जाए तो, बोले हो ही जाएगा, क्रम लेके आ गया अंदर। और मशीन गन के साथ में 7-10 लोग पुलिस में मशीन गन लॉक और चप्पा बचा बिना सुखा था तो बहुत डर। और ऐसे सब बोलने लगे वहां की भाषा में, कुल्लो खुद सकार आपको किरा समझू नहीं सकता। ये होते एवी रीते एवी साथे में बात करी जाए बोली दूसरा ये होता ही है तो मैं आया मारी अंदर क्या है बोली दूसरा बात नहीं कितनी उदर से अंदर कितनी उदर से मारा चैतन्य अंदर नहीं दूसरे उतारी को कोई पर आदि से समकाओ नहीं एवी रीते एयरपोर्ट पर आउट चाहिए ऊपर एक साथना साचू बताओ के साचू बताओ कौन हो साचू बताओ सच बताओ बस क्या करते हो? मैं प्रवचन देता हूँ। प्रवचन में क्या बोलते हो? मैं सब साधक को यही कहता हूँ कि तुम्हें कोई पर देश का एयरपोर्ट ऊपर उतरो तुम्हारी कोई भूल नहीं हो तो पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे परिवार बता तुमने हैरान करे तो ये नहीं परमात्मा देश जो माफ कर चुके वो आप हमारा साधक को नहीं पहुंचे क्योंकि टॉन्ट मारे थे हमने મારી પાસે મોબાઈલ ની અંદર એક વિડીયો હતો ચાંદાનિયામાં આબુશાના અંદર મસ્જિદમાં પ્રવચન થયું અને મસ્જિદના પ્રવચન નો વિડીયો હતો મેં તો આ વખતે વિડીયો બતાવતો ખબર પડે કે આપણું મસ્જિદમાં પ્રવચન આપી છે કારણ કે એ બતાવો એને ખબર પડશે તો મસ્જિદના પ્રવચન ભવિષ્ય જેવો ચાલુ કર્યો કે મોબાઈલની બેટરી 1% હતી મોબાઈલ બી ચાલુ નહીં વખતે હતી મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે મને ચાર્જ કરવા દો અહીંયા તો કે ટ્રાવેલ્સને ચાર્જ ન કરવા દઈએ ઇમિગ્રેશન ઓફિસના અંદર 25 मिनट से कौन सी मोबाइल चार्ज करो, 25 मिनट खाते चार्ज कर मोबाइल चार्जिंग है, 25 वीडियो प्ले करो, वीडियो प्ले करो, हमें इतने दस जगह अल्लाह अल्लाह निंदा काम काम कामी उल्टा पत्ता साला है, ये भगवान है अल्लाह हमें माफ करिए, हमारी बहुत ही भूल थी, आप हमारा इमाम नहीं कराया है, मस्जिद में प्रवचन आ गया तो इमाम જયારે દસે જણા પગમાં પડ્યા અને માફી માંગી કે આવું કેમ થાય છે, એમને દીધો અમે જે દેશમાં ક્યાં એ દેશમાં અત્યાર સુધી મોટા ભાગે આવું થયું છે, આવું થયું છે, એટલે એટલા માટે રાત્રે 2 વાગે એમને કીધું હવે અમને જ્ઞાન આપો, અહીંયા દસે ને જ્ઞાન આપો, અત્યારે મેં કીધું હું દસે ને જ્ઞાન નહીં આપો, હું અત્યારથી જ્ઞાન આપીશ, એટલે અત્યારે ક્યાં કહે છે પ્રશ્ન છે, મેં કીધું ના અત્યારે કુતરાને શું ખબર પડે, મેં કુતરાને ખબર પડે એ તમને નથી પડતી, એટલે કૂતરો નાખવો પડે, તો પહેલો ચાર કૂતરામાં એવો જોઈએ, અત્યાર ગણાય રાત્રે 200 ડોલર લખીને હોટલ બુક કરી, સ્પેશિયલ હોટલમાં રાખવા દેવા માંગુ, 3 દિવસ ત્યાં ઉકાયો, ટીવીની લેંગ્વેજ બાસમતીજીનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું, અને ત્યાં નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ પોલિટિક્સના અંદર પાલેમાં ઉલ્લુ લે ઉલ્લુ પાલે બધી જગ્યાએ સ્થાપના થઈ, આવી રીતે તો ઘણી વાર એક જ છેલ્લે એક રીતમાં કહી દઉં કે આવું ઘણી વાર જીવનમાં થાય, પણ આવું થાય આવે ને જાય, જાવાના એરપોર્ટ ઉપર ત્યાં બાલીના એરપોર્ટ ઉપર જાવાની ભાષામાં એની સાથે વાત કરશે, પ્રવચન હતું રાત્રે 2 પ્રવચન હતા, એક રાતનું પ્રવચન અને એક સવારનું પ્રવચન, હું 5 વાગે લેન થયો હતો, જાવાની ભાષા ચાલતી હતી, બધા લોકો સાથે વાત કરતા, જે બધા સાથે વાત કરતા કરતા પ્રવચનમાં અહીંયા બેસવાનું હોય, હું જાવાની તમારી સાથે વાત કરું છું, અને જેવો ગાડી ઉપર બેઠો જાવાની એ શબ્દ નથી આવતો, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર સિંગલ વર્ડ ઓફ જાવાની, બિફોર 1 સેકન્ડ આઈ વોઝ ટોકિંગ ફ્લુઅન્ટલી ઇન જાવાની, આઈ ડોન્ટ નો વોટ શુડ આઈ સ્પીક એટ ધીસ મોમેન્ટ, ત્યારે પછી આખું લેક્ચર ઇંગ્લિશમાં થયું, ઘણા લોકો ડિસપોઈન્ટ થયા છે, આટલા દૂરથી આવ્યા હતા કે ઇન્ડિયન પર્સન થઈને આવી રીતે જાવાનીમાં લેક્ચર આપશે, બીજા દિવસે સવારનું જે સેશન હતું એ પ્રવચન આખું પ્યોર જાવાનીમાં થયું, જયારે એનો કાળ આવે ત્યારે આમ થાય છે, મારવામાં કઈ નથી, પૈસા આવે ને જાય, બીજા જ્ઞાન પણ આવે છે જાય, પણ દુનિયા કોઈ નવી નથી, બધી જગ્યાએ ફરીને આવ્યા છે, અમે એવું નજર અમે જોઈએ, આ બધું નવું નથી લાગતું, એટલા માટે જ આ મિશન પ્રારંભ થયું છે, અને આદરણીય શ્રી મહેન્દ્રભાઈએ આ કાર્યક્રમનું અમેરિકામાં જોખ્યું, અને એ ઉદ્દેશ્ય કે પક્ષપાત વગર આત્માને જ મુખ્ય કરીને આપણે બધાને પરમાત્મા દેખીને આ એક કાર્ય એવું કરીએ, અને આ પરમાત્માનો લક્ષભાઈનો સોનલબેનનો જેના જેના મને નામ દેના આવડે છે, બાકી બધા જ પદાધિકારી અહીંયા એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, આપે આ સેન્ટરમાં આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની સ્થાપના કરી, કારણ કે દુનિયામાં મસ્જિદ ને ચર્ચમાં પણ થાય છે, આપે પણ અહીંયા અમને આવકાર આપ્યો, અહીંયા પ્રવચનોના આયોજન કર્યા, ફરી ફરી હું આ પરમાત્માનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપના નિમિત્તે મને અહીંયા સ્વાધ્યાય કરવાનો એક અવસર મળ્યો છે, આ પરમાત્માઓને મારા પ્રણામ,
Thank you.